समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, कार्यक्रम परिक्रमा में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल के मैदान की गतिविधियों के भी बारे में देंगे जानकारी और विशिष्ट व्यक्तियों को भी हम करेंगे याद, जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्म दिवस। परिक्रमा के आज के इस अंक के साथ मैं हूं आकर्षिता सिंह और मेरे साथ हैं मेरी को होस्ट शगुन। शगुन, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार आकर्षिता, एंड हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल द लिसनर्स। वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एडिशन ऑफ परिक्रमा ऑन एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़। एंड टुडे इट्स संडे आकर्षिता, एंड ऑन दिस लवली संडे रिमेम्बर दैट एवरी डे इज अ न्यू चांस टू बिकम द पर्सन यू वॉन्ट टू बी। सो फाइंड सम मी टाइम डेडिकेटेड टू योर सेल्फ एंड टेक अ ब्रेक फ्रॉम द स्ट्रेस ऑफ द वीक एंड रीचार्ज योर स्पिरिट्स विद अस एज वी हैव फॉर यू ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। आवर डिस्कशन सेगमेंट डेटलाइन इंडिया रिपोर्ट्स कैप्सूल अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज ट्रिब्यूट्स ऑल दिस एंड मच मोर कमिंग अप फॉर यू, बट वील बिगिन विद द हेडलाइंस फर्स्ट। Union Home Minister Amit Shah inaugurates Prime Minister College of Excellence in all 55 districts of Madhya Pradesh from Indore today.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरीका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं।
रक्त भंडार ऑफ जगन्नाथ टेम्पल एट पुरी इन ओडिशा रीओपन्स आफ्टर 46 ईयर्स।
मौसम विभाग ने कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण कर्नाटक में अगले 3 दिन मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की।
इन विंबलडन टेनिस, नोवाक जोकोविच टू लॉक होम्स विद डिफेंडिंग चैंपियन कार्लोस अल्काराज इन मेन्स सिंगल्स टाइटल क्लैश दिस इवनिंग।
और बर्लिन में यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला स्पेन से।
And now it's time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at national or global level. And today we will talk about 14 July, which is today, which is Bastille Day or French National Day. So this Bastille Day is celebrated on 14 July every year. This day marks the anniversary of the storming of the Bastille on 14 July 1789, which is a turning point of the French Revolution. Bastille Day is celebrated worldwide, especially in countries with large French populations due to France's cultural influence. And this day is a celebration of the French Republic's three fundamental ideals: liberty, equality, and fraternity. 235th National Day of French Republic is being celebrated today also in India also at Puducherry. Mrs. Lise Talbobar, Consul General of France, Puducherry and Chennai, and Sri A. Kuluthungan, District Collector, have participated in the wreath-laying ceremony held at War Memorial in the Beach Road. Both the national flags of India and France were hoisted and national anthem of the both countries were played.
शगुन, बैस्टिल डे पर रामधारी सिंह दिनकर की वो पंक्तियां याद आती हैं कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुखबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जी हाँ, जब जनता अपने पर आ जाती है शगुन, तो न्याय लेकर ही दम लेती है।
एब्सोल्युटली।
कल शाम फ्रांसीसी क्रांति की प्रमुख घटना बैस्टिल पर हमले की याद में बीच रोड पर एक मशाल जुलूस का आयोजन किया गया था। इस प्रतीकात्मक घटना ने उस दिन की याद दिला दी जब फ्रांस के लोगों ने राजशाही के खिलाफ विद्रोह की सामाजिक बाधाओं को पार करते हुए एक राष्ट्र का गठन किया था। पुडुचेरी के लोग तमिल, तेलुगु, मलयालम के साथ साथ फ्रेंच और अंग्रेजी भी बोलते हैं। पुडुचेरी के कुछ स्कूल संचार के माध्यम के रूप में फ्रेंच का उपयोग करते हैं। पुडुचेरी के लोगों के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि इस क्षेत्र की आधी आबादी के पास फ्रांसीसी और भारतीय दोनों की दोहरी नागरिकता है। विभिन्न जाति, धर्म, पंथ, मूल के लोग यहां खुशी से रहते हैं और सभी त्योहारों का एक साथ आनंद लेते हैं। क्योंकि पुडुचेरी फ्रांसीसी से प्रभावित था, इसलिए पुडुचेरी के लोगों की वास्तुकला, भोजन और जीवन शैली पर फ्रांसीसी संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट है।
डीप इम्पैक्ट ऑन देयर फूड कल्चर कस्टम्स एंड ऑल राइट।
पूर्व की जो फ्रेंच रिवेरा पुडुचेरी की यात्रा पर आप पाएंगे कि कैसे इस जगह के दो क्षेत्रों में फ्रेंच और तमिल संस्कृति को समान उत्साह के साथ मनाया जाता है और दो प्रमुख प्रभावों की उपस्थिति ने पुडुचेरी संस्कृति को जटिल लेकिन साथ ही साथ बहुत जीवंत भी बना दिया है।
And listeners, giving you some historic information about the foundation of Pondicherry, it was laid in the year 1673 after the La Compagnie Française des Indes Orientales. It was successfully obtained Farman. Farman was successfully obtained from the Kiladar of Valikondapuram under the Sultan of Bijapur. On 4th February 1673, a French company official by name Ballinger took up residence in the Danish lodge in Pondicherry. In 1674, the French company placed François Martin as the first governor, and the governor initiated the ambitious project to transform Pondicherry from a small fishing village into a flourishing port town, Akarshita, at that time. And this particular day, the July 14th, this is France's, as we have told you, this France's National Day, which is also known as Le 14 Juillet. 14 is actually 14 in French, or Fête Nationale Française. It symbolizes French patriotism and national identity, commemorating the storming of the Bastille prison in 1789. This pivotal event marked a turning point in the French Revolution, signifying the end of absolute monarchy and the beginning of the modern French Republic. And the storming of the Bastille is remembered for catalyzing the revolution and inspiring the pursuit of democratic values worldwide, not just in France, but also all over the world.
1789 में इसी दिन बेस्टिल पर हमला राजा लुई 16 की राजशाही के खिलाफ ताकतों को प्रबंधित करने में असमर्थता के कारण आर्थिक और राजनीतिक संकट के बीच हुआ था। मध्ययुगीन काल के दौरान बेस्टिल एक किले के साथ साथ एक जेल भी था और सेंट्रल पेरिस में सत्तावादी बार्बन राजशाही का प्रतीक था। किले के परिणाम स्वरूप पहले भी बहुत सारे विरोध प्रदर्शन किए जा चुके थे। 14 जुलाई की सुबह उनका डर सच साबित हुआ जब राजशाही के खिलाफ शाही परिवार और लोगों के बीच पूरे पेरिस में संघर्ष हुआ और बेस्टिल के सशस्त्र बलों को एक सशस्त्र भीड़ ने घेर लिया। लगभग 1000 लोगों की गुस्साई भीड़ सीधे किले में घुस गई। कुछ घंटों के बाद जब युद्ध कई लोगों की जान लेकर खत्म हो गया, अंततः भीड़ ने महल पर कब्जा कर लिया और शाही सैनिकों ने इस मामले में हस्तक्षेप न करने या भीड़ को वहां से चले जाने का निर्णय लिया। और शगुन सही बात है, जब जनता अपने पे आ जाती है तो वो कुछ भी कर सकती है ना।
आई एग्री विद दैट एब्सोल्युटली। एंड इन फ्रांस अ पब्लिक हॉलीडे इज डिक्लेयर्ड ऑन दिस डे एज अ मार्क ऑफ इट्स सेलिब्रेशन। And for that, for celebrating this event, parades, fireworks, and public eating are some of the ways in which this day is celebrated there. A military parade marked by the marching of French troops and their riding and driving, along with the presence of world leaders on Elysee Avenue, occurs on this day. This military parade is one of the most ancient parades in the world, as it first took place on Bastille Day in 1880. And on this day in Paris, people go for a fun picnic in parks, and they mingle with others and their friends and families and enjoy French food and wine. And then everyone heads over to watch the fireworks from the Place de la Concorde. And all the day's ceremonies finally end with a public interview of the President of the Republic from an official place of residence, also known as Elysee. And listeners, today, July 14, this also marks the one-year anniversary of India's groundbreaking Chandrayaan mission launch. Right? So don't tell me the sky is the limit when there are footprints on the moon. And this particular milestone that catapulted the nation into an elite group of countries which are capable of soft landing on moon.
शगुन, ये सुनकर मुझे प्रसून जोशी की वो कविता याद आती है कि अंतरिक्ष में गूंज उठे हम चंद्रयान का गान लिए, चांद तिरंगे रंग में रंगा नई एक पहचान लिए, मेरे भारत के वैज्ञानिक तुम गौरव हो भारत का, ऊंचा माथा लिए खड़े हम सच्चा एक अभियान दिए। जी हां, हमारे वैज्ञानिक दिन रात एक कर देते हैं एक मिशन को सफल बनाने में, जिस पर करोड़ों भारतीयों की उम्मीदें टिकी होती हैं। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने पिछले साल इसी दिन श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक मिशन लॉन्च किया था, जिसने उल्लेखनीय उपलब्धियों की एक श्रृंखला के लिए मंच तैयार किया था। एक महीने की लंबी यात्रा के बाद अंतरिक्ष यान ने 5 अगस्त 2023 को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया। मिशन का निर्णायक क्षण 30 अगस्त को आया, जब विक्रम लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरा, जिससे भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया, चंद्रमा और इस चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में ऐसा करने वाला पहला देश था।
Right.
शगुन, ये भी है कि हमारे जो वैज्ञानिक होते हैं दिन रात एक करके कितनी मेहनत करते हैं और कितनी रातों की नींद जो है गंवाते हैं, और कितना प्रेशर रहता है उनपे, इतने करोड़ों भारतीयों की जो आकांक्षाएं होती हैं, उनके सपने उनपे टिके होते हैं,
और कैसे करके माइंड एंड स्टिल दिस वॉज द मोस्ट द लैंडमार्क राइट सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ चंद्रयान 3।
और वो भी इतने प्रेशर में, और इतने और जहां तक देखा जाए तो इसकी लागत भी बहुत कम थी अन्य देशों की तुलना में। कैसे उन्होंने इतनी मेहनत से, इतने संघर्षों से, इतने करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों पर खरे उतरना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
राइट, एंड चंद्रयान 3 आकर्षिता, इट हैज नॉट ओनली एक्सपेंडेड अवर नॉलेज ऑफ द मून बट हैज ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेटेड इंडियाज ग्रोइंग केपेबिलिटीज इन स्पेस एक्सप्लोरेशन। दिस मिशन हैज लेड द ग्राउंड वर्क फॉर फ्यूचर लूनर एंड इंटर प्लानेटरी मिशन which are to come now, right, in the coming future. And we are all looking forward to that, right?
Right.
And the successful landing, talking about that particular day, the successful landing was followed by the deployment of Pragyan rover, which embarked on its exploration of the lunar surface. And over the next 2 weeks, Pragyan covered approximately 100 meters, conducting various experiments and sending valuable data back to Earth, which we keep on using for different reasons, right? The rover's findings have provided crucial insights into the moon's composition, including the detection of sulfur and also other elements in the lunar soil. And this is one of the most significant discovery that I'm about to talk about, the confirmation of the presence of water molecules on the lunar surface. This was also discovered that day, right? This finding has enormous implications for future lunar exploration and potential human settlements on moon.
Gee.
Oh God, we are very excited.
Yes, we are.
The data collected by Chandrayaan 3 has also contributed to our understanding of the moon's geological history and the processes that shaped its पोलर रीजन।
और शगुन, चंद्रयान 3 की सफलता ने भारत को वैश्विक अंतरिक्ष समुदाय में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए दरवाजे खोले हैं और अंतरिक्ष अन्वेषण के भविष्य को आकार देने में अपनी भूमिका को मजबूत किया है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो हम भूल रहे हैं कि हमारे जितने भी ये मिशन हुए हैं, इसमें जो कामयाबी है, कितनी महिला वैज्ञानिक हैं जिनका योगदान रहा है, उनको भी हम बहुत बहुत ज्यादा थैंक्स बोलना चाहेंगे, बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे।
राइट, वी आर वेरी ग्रेटफुल। एंड एज वी रिफ्लेक्ट ऑन द अचीवमेंट्स ऑफ द पास्ट ईयर, द मिशन कंटिन्यूज टू इंस्पायर एंड पेव द वे फॉर न्यू डिस्कवरीज इन अवर ओन गोइंग क्वेस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉस्मोस।
और श्रोताओं, अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। सबसे पहले चलते हैं हिमाचल प्रदेश की ओर। हिमाचल प्रदेश को खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नवोन्मेषी पहल व उल्लेखनीय कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप द्वारा आयोजित एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव में केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदान किया। हिमाचल प्रदेश की ओर से यह पुरस्कार आवासीय आयुक्त मीरा मोहंती ने प्राप्त किया। एक रिपोर्ट।
खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों व नीतियों के सफल कार्यान्वयन से हिमाचल प्रदेश के लाखों किसानों और ग्रामीणों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं और उनकी आर्थिकी सुदृढ़ हुई है। राज्य ने अपने खाद्य प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ किया है, जिसमें 23 नामित खाद्य पार्क, एक समर्पित मेगा फूड पार्क, कांगड़ा जिला और सोलन में 2 कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर, 18 कोल्ड चेन परियोजनाएं, जिनमें राज्य खाद्य प्रसंस्करण योजना और प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां शामिल हैं। इस योजना के तहत 1320 व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को 30 करोड़ रुपए की क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्वीकृत और वितरित की गई है। साथ ही 13,427 स्वयं सहायता समूह सदस्यों को 50 करोड़ 31 लाख रुपए वितरित किए गए हैं। सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ाने के लिए राज्य में 3 इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। खाद्य प्रसंस्करण प्रदेश के लिए प्रमुख क्षेत्र है, क्योंकि ये मूल्य संवर्धन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संबल प्रदान करता है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी शिमला से रितेश कपूर।
Now listeners, we'll take you to Bengaluru, where the Indian Institute of Management had organized Lakshya 2024 event today to foster collaboration between defense forces officers and industry leaders. The Premier Management Institute is training defense personnel on the verge of retirement with an objective to make them management savvy so that they can serve the corporate sector with professionalism. Colonel Amit Verma, an army veteran who runs Agile 4G that helped ex-servicemen to be successful entrepreneurs, has spoken exclusively to Akashwani News about the Lakshya event and also on how the veterans who retired from defense forces are contributing to the society as successful entrepreneurs. More from our correspondent.
Lakshya, which is happening here in IIM Bangalore, it's an initiative by the officers who are attending the BMP program here. I'm Colonel Amit. I represent Agile 4G. We help startups get the initial funding and they get their feet on the ground. And when it comes to veterans, it is about connecting with them and collaborating with them in their transition journey. In Lakshya, they're getting a platform. In this platform, they're able to interact with corporate professionals who will give them jobs. They will interact with corporate leaders who will understand their worth. They have to create opportunities. Nobody is going to come and ask them. They have to go out and meet people. They have to make things happen. And I think with Lakshya, a very important step has been taken in this direction. Well, when it comes to understanding the challenges that our armed forces face, the first is indigenization. We cannot wait for foreign countries to give their technologies to us. We have to make in India. We have to think in India. I'll give you an example of Abhijit Bhute, awesome naval aviator, who has started a startup in aviation, basically in space tech, a niche which only exists in a very few countries. And I'm proud to say that I know him, and I'm proud to say that more and more officers like him are coming out ahead and creating opportunities where they will not only make the technology and the products in India, but they will also give job opportunities to many technically capable people in the entire ecosystem. And this is happening because we are innovative, because armed forces officers, when they transition, they have a hunger in them to prove themselves. And I think getting into defense startups is the way to go for them.
और श्रोताओं, अब आइए चलते हैं त्रिपुरा की ओर. The 7-day Kharchi Puja began today in Tripura. The main puja was held at Chaturdasha Devta or the 14 Gods Temple at Khairpur near Agartala. Kharchi Puja is one of the most important festivals of Tripura. This festival draws thousands of devotees and highlights the region's rich cultural and religious heritage. And we have a report from our Agartala correspondent.
One of the most popular festivals of the state, the 7-day Kharchi Puja began today in Tripura. The puja began with great devotion and by performing various meticulous traditional rituals. The festivities began with the ritual bathing of the idols of the 14 gods in Howda River. Temple authorities, priests and a throng of devotees were present to partake in the rituals. This festival, rooted in tradition, dates back to the era of the erstwhile royal dynasty and follows strict rituals and customs. Kharchi Puja, lasting a week, holds deep religious significance and attracts thousands of devotees from the state and beyond. The ritual bathing of the deities, which symbolizes purification, marks the start of the festival. Following this, the idols are returned to the temple with a great reverence and ceremony. During the festival, the deities are venerated with offerings of flowers, fruits and sweets amid the chanting of hymns and traditional music. The temple is beautifully decorated and various cultural programs enhance the festive mood. This year, the theme of the festival is green in future. Accordingly, 15,000 tree saplings will be given out for plantation. Tripura Chief Minister Dr. Manik Saha, while inaugurating the festival, said that upcoming generations should be taught and informed about the importance of Kharji Puja. Over 900 food stalls have been placed at the main event where the festival is taking place by deploying food safety vans to keep a check on the food quality. About 1,000 artists and performers have been invited to perform for the next 7 days. Besides being a religious event, Kharji Puja serves as a cultural celebration fostering community and shared heritage. Kunal Shinde for Parikrama from Akashvani Agartala.
Now we will take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
आज हम समाज सुधारक और शिक्षाविद गोपाल गणेश अगरकर को याद कर रहे हैं। गोपाल गणेश अगरकर का जन्म 14 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र में सतारा जिले के कराड़ तालुक में हुआ था। वो पहली बार तिलक से डेक्कन कॉलेज में मिले, जहां वे उनके सहपाठी थे। तिलक अगरकर की जोड़ी ने शिक्षा और सामाजिक सुधार को बढ़ावा देने और जनता के बीच देशभक्ति पैदा करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों की श्रृंखला स्थापित की।
क्या जीवन अपुले सार्थ करा रे, राष्ट्रभक्ति निस्वार्थ करा रे, एकजुटी ने कार्य कराया देशा से। या साथी बना अनसाथ करा रे, मातृभूमि ही आज पुकारे, जागृत हो न कंकण बांधु दिवस रात्र जगन्याते।
वो लोकमान्य तिलक द्वारा स्थापित प्रमुख मराठी समाचार पत्र केसरी के पहले संपादक थे। गोपाल अगरकर का मानना था कि समाज सुधार की जरूरत अधिक तात्कालिक है, इसलिए उन्होंने अपना स्वयं का समाचार पत्र सुधारक शुरू किया, जिसमें उन्होंने अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था के अन्याय के खिलाफ अभियान चलाया।
अगरकर ने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। गोपाल गणेश अगरकर जीवन भर जन कल्याण के लिए काम करते रहे और 17 जून 1895 को उनकी मृत्यु हो गई। इस महान राष्ट्रवादी को विनम्र श्रद्धांजलि।
कांग्रेस कार्यकारिणी ने 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद गांधी जी ने ब्रिटिश शासन से भारत से स्वैच्छिक वापसी का आह्वान किया। 29 अप्रैल से 1 मई 1942 तक अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यकारिणी के प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए इलाहाबाद में बैठक हुई। हालांकि गांधी जी बैठक से अनुपस्थित थे, लेकिन उनके कई बिंदुओं को प्रस्ताव में स्वीकार किया गया। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण अहिंसा के प्रति प्रतिबद्धता थी।
14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक वर्धा में हुई और गांधी जी को आगामी जन आंदोलन का प्रभार लेने के लिए अधिकृत किया गया। इस संकल्प को आम तौर पर भारत छोड़ो प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है, जिसे अगस्त में बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में अनुमोदित किया जाना था।
7 और 8 अगस्त 1942 को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का अधिवेशन हुआ, जिसमें भारत छोड़ो प्रस्ताव की पुष्टि की गई और इसके साथ ही आगाज हुआ भारत छोड़ो आंदोलन का।
आज हम शहीद गंगराम को भी याद कर रहे हैं। वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में नौकरी कर रहे थे, लेकिन 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध में भाग लेने के लिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी। उन्होंने कई अवसरों पर अंग्रेजों से लड़ाई की, अपने साथी विद्रोहियों को वित्तीय सहायता दी और उन्हें ब्रिटिश ठिकानों पर हमला करने के लिए प्रेरित किया।
कंपनी के सैनिकों ने गंगाराम को गिरफ्तार कर लिया और उन पर नौकरी छोड़ने, विद्रोह और अंग्रेजों से बगावत में सहायता करने का मुकदमा चलाया गया। उन्हें 1857 में बेड़ियों में कड़े श्रम के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और बंबई से अंडमान की सेलुलर जेल भेज दिया गया था, जहां 14 जुलाई 1858 को कैद में ही उनकी मृत्यु हो गई। शहीद गंगाराम को नमन।
और श्रोताओं, अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल।
वील टॉक अबाउट फुटबॉल फर्स्ट। The final match of the UEFA European Football Championship Euro Cup will be played between Spain and England today, late night at 12:30 Indian Standard Time in Berlin. Spain is aiming for a record fourth title at the Continental Championship, while England will be playing in their second consecutive Euro final and in another Continental Football Championship, Copa America, Tournament of American Contingent. Argentina and Colombia will lock horns in Miami tomorrow early morning at 5:30 Indian Standard Time. Argentina is looking for its third consecutive win, while Colombia has a chance to win their second Copa America title.
विंबलडन टेनिस के पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज सर्बिया के नोवाक जोकोविच का सामना मौजूदा चैंपियन स्पेन के कार्लोस अल्कराज से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। जोकोविच 7 बार विंबलडन का खिताब जीत चुके हैं, जबकि अल्कराज दूसरी बार इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचे हैं। प्रतियोगिता के मिक्स्ड डबल्स फाइनल में आज पोलैंड के जॉन जेलेंस्की और ताइवान के सू वेई सी की जोड़ी का मुकाबला मेक्सिको के सेंटियागो गोजालवेज से और गुलियाना ओल्मोस की जोड़ी से होगा। इस बीच महिला सिंगल्स के फाइनल में कल चेक गणराज्य की बारबरा क्रेचिकोवा ने इटली की जैस्मिन पावोलिनी को हराकर अपना पहला विंबलडन खिताब जीत लिया। और श्रोताओं, अब समय हो चला है उन हस्तियों को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि या जन्मदिवस या फिर जयंती। तो इस कड़ी में सबसे पहले हम याद कर रहे हैं लीला चिटनिस को। आज हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री लीला चिटनिस की पुण्यतिथि है। लीला चिटनिस ने 52 वर्ष तक अभिनय किया और अशोक कुमार की नायिका रही, तो बाद में अनेक फिल्मों में वे दिलीप कुमार, राज कपूर और देव आनंद की मां की भूमिकाओं में आई। लीला चिटनिस ने अभिनय करने के अलावा एक फिल्म आज की बात का 1995 में निर्माण और निर्देशन भी किया। भारतीय सिनेमा में आने वाली सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों में दुर्गा खोटे के बाद लीला चिटनिस का नाम शिखर पर है। वे पहली भारतीय अभिनेत्री थी जिन्होंने 1941 में लक्स साबुन के लिए विज्ञापन फिल्म में काम किया। उनके पूर्व केवल हॉलीवुड नायिकाओं को ये रोल मिलता था। आइए सुनते हैं लीला चिटनिस की फिल्म का ये गीत।
And Akarshita, over time we find it difficult to recollect the name of a film or even the actor on whom a song was filmed. But we remember the melody and we remember with perfect clarity the beautiful musical compositions of Madan Mohan.
Ji.
Who can after all forget the music he composed for the number Har Taraf Ab Yahi Afsane Hain and much more.
Ji. Ji, Shrotaon, aaj Madan Mohan की पुण्यतिथि है। वे 1950, 1960 और 1970 के दशक में हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। अपनी गजलों के लिए प्रसिद्ध इस संगीतकार का पूरा नाम मदन मोहन कोहली था। अपनी युवावस्था में मदन मोहन एक सैनिक थे, बाद में संगीत के प्रति अपने झुकाव के कारण आकाशवाणी से जुड़ गए। मदन मोहन को विशेष रूप से फिल्म उद्योग में गजलों के लिए याद किया जाता है। उनकी प्रमुख फिल्में हैं अदालत, जेलर, मनमौजी, संजोग, वीर सारा। उन्हें फिल्म दस्तक के लिए सर्व श्रेष्ठ संगीतकार के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइए सुनते हैं फिल्म मेरा साया से उनके द्वारा निर्देशित किया ये गीत झुमका गिरा रे।
झुमका गिरा रे बदले के बाजार में, झुमका गिरा रे बदले के बाजार में, झुमका गिरा झुमका गिरा झुमका गिरा हाय हाय हाय, झुमका गिरा रे बदले के बाजार।
Today we are also remembering Joseph Harnell, who was an American composer, musician and music arranger. Harnell sought work in pop and jazz, working as a for-hire pianist after returning to New York City in 1950. Harnell's biggest success was this arrangement of Fly Me to the Moon, so let's listen to that.
आज भारत के भूतपूर्व 16वें मुख्य न्यायाधीश थे यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ और आज उनकी पुण्यतिथि है। वे 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे। वे सबसे ज्यादा समय तक भारत के मुख्य न्यायाधीश पद पर रहे। वाई चंद्रचूड़ के पुत्र डी वाई चंद्रचूड़ भी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं।
And today it's the birthday of the English singer-songwriter and record producer Daniel Campbell Smith, he who is best known as the founder, lead singer and primary songwriter of the English pop-rock band Bastille. And in February 2022, they released their fourth album, Give Me the Fourth. And listeners, you're listening to this song, Pompeii.
श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे इजाजत लेने का, तो अनुमति दीजिए आकर्षिता और शगुन को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की।
नमस्कार
नमस्कार।